स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार तेरा नाम सारे दिलों में हो। तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए,
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा मैं ये समझाऊं। वादा ये रहा भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा मैं ये समझाऊं। तेरे लिए जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो मैं जीऊंगा तेरे लिए।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम देख रहे थे कि यूहन्ना को प्रभु यीशु ने स्वर्ग में बुलाया और वह स्वर्ग के दृश्य का वर्णन कर रहा था, परंतु अध्याय 6 में दृश्य पुनः पृथ्वी का है और कलीसिया यहां नहीं है। अध्याय 6 से 18 में महाक्लेश का वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेकर उसकी मुहरें एक एक करके खोलता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके जीवित और सामर्थी वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हुए हैं। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा आप प्रत्येक के जीवन से बोले और बातचीत करें, उनके जीवन के हर एक प्रकार के कमी घटियों को, त्रुटियों को, पाप और अपराधों को आप ही दूर करें। हो सकता है हमारे भाई बहन इस समय निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, माता पिता पति पत्नी के संबंध को लेकर। हमारी यही विनती है कि आप प्रत्येक को अपनी शांति दे ताकि हर एक इस बात को समझने पाए कि वे आपकी रचना है, आपकी सृष्टि है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आप चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे की चिंता करे, एक दूसरे को संभाले। हाँ प्रभु, हमारी विनती है कि आप आज के वचन से हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेकर उसकी मुहरें एक एक करके खोलता है, अर्थात वह महाक्लेश दागता है। महाक्लेश की संपूर्ण गतिविधि का संचालन प्रभु यीशु के हाथ में है। भजनकार कहता है कि वह उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा। भजन संहिता 2 उसके 9 पद में हम इसे पाते हैं। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। क्या आपके पास इससे कोई अच्छा सुझाव है कि वह उसके अनुसार इस पृथ्वी के विद्रोह का दमन करे? यदि है तो कृपया प्रभु यीशु को आप समझा दें वह कैसे दमन करेगा। यदि वह उसी रूप में आए जैसे वह 2000 वर्ष पूर्व आया था तो क्या रूसी उसे सत्ता दे देंगे? प्रभु यीशु को सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मनुष्य स्वयं ही सिंहासन पर बैठना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या मैं कह सकता हूं कि सिंहासन पर बैठने योग्य केवल प्रभु यीशु ही है? तो वह सत्ता को कैसे अपने हाथ में लेगा? जैसा भजनकार भजन संहिता 2 में कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अब हम यही देखेंगे। यह पृथ्वी पर दंड का आना है। कलिसिया दंड के इस समय से बची रहेगी। कैसे? क्या इसलिए कि वे भोले भाले विश्वासी हैं? जी नहीं, वे पापी हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। महाक्लेश में वे ही जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार किया है। और यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने रेडियो प्रसारण की व्यवस्था की है कि सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच जाए। वह सब मनुष्यों के लिए सुसमाचार सुनने की व्यवस्था करेगा, और जब वे निर्णय लेंगे तो स्पष्ट होगा कि वे महाक्लेश में होंगे या नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जाएगा, सब लोगों को सुनाया जाएगा, और तब अंत आ जाएगा, ताकि कोई यह ना कहने पाए कि मैंने नहीं सुना, अन्यथा मैं विश्वास कर लेता या कर लेती। इसलिए अवसर सबको मिलेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अध्याय 4 और 5 में आने वाली घटनाओं की तैयारी प्रकट करते हैं। आने वाली घटनाएं अर्थात पृथ्वी का दंड। अध्याय 4 में हमने सिंहासन और त्रिएक परमेश्वर को देखा है। अध्याय 5 में हमने पुस्तक और प्रभु यीशु को देखा है। कुछ कारक हैं जो महाक्लेश की उग्रता और क्रूरता को बढ़ावा देते हैं। आइए हम देखेंगे। पहला है, पवित्र आत्मा बुराई को नहीं रोकेगा। क्या वह संसार से चला जाएगा? जी नहीं, वह संसार से कुछ नहीं करेगा। वह तो पेंतिकोस के दिन से पहले ही से इस संसार में था, परंतु उसने तब तक नई सेवा आरंभ की, मसीह की देह में विश्वासियों का बपतिस्मा करना, उनमें अंतर्वास करके उनका मार्गदर्शन एवं निर्देशन करना। वह कलीसिया को इस पृथ्वी से ले जाएगा, परंतु स्वयं यहीं रहेगा। वह बुराई को नहीं रोकेगा। दूसरे शब्दों में, उस अल्प समय में मनुष्य को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिलेगा, शैतान को भी पूरी छूट मिल जाएगी। इसी कारण उस समय मैं यहां पर रहना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात है, सच्ची कलीसिया जो ज्योति और नमक है, इस पृथ्वी से चली जाएगी, अर्थात उठा ली जाएगी। यद्यपि कलीसिया का प्रभाव इस संसार में बहुत कम है, परंतु है तो सही, उस युग में तो वह भी नहीं रहेगा। और तीसरी बात हम देखते हैं, शैतान जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। वह धूप रहते धान एकत्र करना चाहता है। वह उस समय पूरा पूरा लाभ उठाएगा और परमेश्वर उसे स्वतंत्रता दे देगा। और चौथी बात है महाक्लेश के समय की, दुष्ट जन अपनी दुराचारी योजनाओं को पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में, ख्रिस्त विरोधी कुछ समय के लिए पृथ्वी की सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। और पांचवी बात है, परमेश्वर से सीधा दंड मिलेगा। पद 17 में यह प्रकट है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। मेरे विचार में तो ऐसा नहीं है कि महाक्लेश एक आंधी के समान अचानक ही आ जाएगा। मुहरों का खोलना शनय शनय, युक्ति युक्त और समय के क्रम में है। एक मुहर एक बार में खोली जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ की बात करती है। जी हाँ, इस अध्याय की विषय वस्तु पर ध्यान देते समय मैं सावधानी पूर्वक कहता हूं कि अध्याय 4 से आगे सब भविष्य की बातें हैं। अब यदि यह समय भविष्य का है और हम उस युग में हैं जब जो बातें हो रही हैं, अर्थात कलीसिया के युग में हैं, तो हम किसी भी मुहर का खुलना, तुरहियां, कटोरे या मनुष्यों को अपने युग से संबंधित नहीं बता सकते। मेरा मानना है कि हम मंच तैयार होता हुआ देख सकते हैं, परंतु मैं यह नहीं मानता कि इनमें से एक भी घटना आज पूरी हो रही है। परंतु अनेक विचारक हैं जो इसकी व्याख्या आज के संदर्भ में देखते हैं। मेरे प्रियो, यह अति रोमांचकारी है और सुनने वाले तथा इस विषय पर लिखी पुस्तकों के पढ़ने वाले भी अनेक हैं, परंतु यह निश्चय ही वैसा नहीं हो रहा है जैसा यूहन्ना ने यहां पर लिखा है। मैं स्वयं सिद्ध प्रमाण स्वरूप एक बात रखना चाहता हूं कि अध्याय 6 से आगे का वृतांत भावी घटनाएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। प्रकाशित वाक्य का वह अंश जो 7 कलीसियाओं से संबंधित है इतिहास में संयोजित किया जा सकता है, परंतु इतिहास की इन भावी घटनाओं में से कुछ भी अब तक के इतिहास में नहीं जोड़ा जा सकता है। भविष्यवाणी की व्याख्या की 2 प्रणालियों में, पहला भविष्य संबंधित एवं ऐतिहासिक विचार में जो अंतर है वह प्रकाशित वाक्य के इस बिंदु पर आकर स्पष्ट होता है। ऐतिहासिक विचार के अनुसार यह सब इतिहास है, परंतु यह एक रोचक बात है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले भी कहते हैं कि यहां से आगे प्रकाशित वाक्य भविष्य की चर्चा करता है, या कुछ आगे चलकर वे कहते हैं कि यह भविष्य है, अर्थात वे इन घटनाओं को घटित नहीं कह पाते हैं। किसी विचारक के अनुसार वे जो प्रकाशित वाक्य की घटनाओं को इतिहास में पूरी हो गई मानते हैं उनमें 50 व्याख्याएं हैं जिनमें से 49 व्याख्याएं गलत सिद्ध हुई हैं, और मेरे विचार में 50वां भी व्याख्या जो उन्होंने किया है वह भी गलत है। ऐसा ही एक बाइबल अध्ययन के शिक्षक का कहना था कि शैतान अथाह कुंड में डाल दिया गया है। मैंने पूछा, तो वह संसार में आज कैसे काम कर पा रहा है? उन्होंने कहा कि उसकी जंजीर बहुत लंबी है कि वह जंजीर से बंधा हुआ ही संसार में घूम सकता है। मैंने आश्चर्य से कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि उसकी जंजीर बहुत लंबी है कि संपूर्ण संसार में विचरण कर पाए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ धर्मशास्त्र अंश बड़े ही असंगत प्रतीत होते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि ये बातें होने वाली है, और यहां से अध्याय 20 तक सब कुछ भावी घटना है। यहां समय का क्रम चल रहा है जो तर्कपूर्ण है। आप नहीं कह सकते हैं कि ये घटनाएं इस समय में हो रही है, वे इतिहास नहीं है। जी हां, इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु सब मोहरों को क्रमवार खोलेगा, एक एक करके खोलेगा। वह सर्वे सर्वा है और स्वर्ग में प्रत्येक प्राणी उसके आदेशों पर काम करता है। अब 4 घुड़सवार निकलेंगे। वह मुहर तोड़कर कहता है, जा। यूहन्ना पुनः कहता है कि उसने देखा और सुना। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए एक प्रकार से टीवी प्रसारण है। जैसा कि यूहन्ना ने देखा और सुना, उसी बात को वह हम तक पहुंचा रहा है, ताकि हम भी उसी रीति से इस बात को समझने पाए। इस श्वेत घोड़े के सवार के बारे में अनेक व्याख्याएं हैं जिनमें बहुत ही मतभेद है। टीकाकारों में मुख्य व्याख्या है कि वह प्रभु यीशु को दर्शाता है। वे अपने विचार के पक्ष में भजन संहिता 45 और प्रकाशित वाक्य 19 का संदर्भ देते हैं, जो प्रभु राज से पहले महाक्लेश को मानते हैं। उनके विचार में यह ख्रिस्त विरोधी है। मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु पुस्तक की मुहर तोड़ते ही कूदकर घोड़े पर नहीं बैठेगा। मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन है। मेरा अपना विचार है कि वह ख्रिस्त विरोधी है, वह मसीह होने का दावा करेगा। आज हम एक विश्व शासक की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व के सब देश परेशान हैं। अव्यवस्था बहुत अधिक हो गई है। कोई भी सरकार इसे संभालने में सक्षम नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। इन सब घटनाओं से भावी शासक के आगमन का मार्ग तैयार होता है। जी हां, ख्रिस्त विरोधी खलनायक के जैसा नहीं दिखता है। शैतान के दूत भी तो ज्योति के स्वर्गदूत ही हैं। उसके सिंह और चिरे हुए खुर नहीं हैं। सच तो यह है कि वह संसार का सबसे अधिक रूपवान पुरुष होगा। संसार उसे चुनकर उसे प्रतिष्ठित करेगा, क्योंकि वह अपने ही नाम में आएगा। परंतु जब वह सत्ता हाथ में ले लेगा, तब संसार के लिए बहुत बुरा होगा। मेरे प्रियो, यह मेरी बात नहीं है। जीवन के अन्य क्षेत्रों से विश्वासी होने का दावा नहीं करने वाले भी नहीं कहते हैं। बात सच है कि एक रूपवान व्यक्ति को चुना जाएगा। आज मानव जाति क्या करता है? यही करता है कि अच्छे रूपवान व्यक्ति को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है और बाद में धोखा खाता है। हम देखते हैं कि मानव जाति पर अधिकाधिक जानलेवा हथियारों का बोझ डालना संसार को आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए बाध्य करके तकनीकी ने मानव जाति को ऐसी निराशा में लाकर खड़ा कर दिया है कि हम किसी भी कैसर को ईश्वर मान लेंगे, यदि वह संसार में एकता और शांति स्थापित करवाए। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी यही नारा लेकर के आएगा, विश्व एकता एवं शांति। मेरे विचार में यदि कोई भी इस समय इस प्रस्ताव के साथ उभरे, तो संसार यह नहीं देखेगा कि वह स्वर्ग से आया है या नरक से। उन्हें किसी भी कीमत पर शांति चाहिए और वे किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने कहा है कि यह निष्क्रियता का युग है, शांति का नहीं। शांति की चर्चा जगह जगह की जा रही है। एक स्त्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम अपनी जमीन कर दी कि वह विश्व शांति और मनुष्यों में सद्भावना उत्पन्न करने में सहयोगी हो। मेरे विचार में उसने अपनी संपत्ति नाली में बहा दी, क्योंकि पैसों से चाहे करोड़ों रुपए उसके पास क्यों ना हो, आप शांति नहीं खरीद सकते हैं। फोर्ड कार कंपनी संसार की सबसे धनवान संस्थाओं में से एक है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका पैसा अंततः विश्व शांति, उन्नत सरकार, जीवन और शिक्षा के लिए काम में लिया जाएगा। परंतु संसार की दशा तो बिगड़ती ही जा रही है। मेरे प्रियो, क्या आज आप उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? संसार में क्या है? प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि सरकार प्रतिदिन इसे दूर करने की चेष्टा कर रहा है। ख्रिस्त विरोधी के शांति प्रयासों के कारण संसार सोचेगा कि वह प्रभुराज का आगमन है, जबकि वह वास्तव में महाक्लेश का आगमन होगा। महाक्लेश का आगमन मेमने के समान होगा, परंतु उसका निकलना सिंह की नाई होगा। शांति की झूठी प्रतिज्ञा जो संसार के लिए की जाती है, लोग भ्रमित होंगे। जी हां, शांति की झूठी प्रतीक्षा पर संसार विश्वास कर लेगा, उसकी प्रतिज्ञाओं को मान लेगा और प्रतीक्षा करेगा कि उन्हें शांति मिले, परंतु यह ऐसा नहीं होने देगा। यह घुड़सवार प्रभु यीशु नहीं है, इसलिए तथ्यों के प्रकाश में कि प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान एक मेमना है जो यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद का मूल, इन घटनाओं को स्वर्ग से निर्देशित कर रहा है और चारों घुड़सवारों को आदेश दे रहा है कि वे सवार होकर निकलें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट पहचाना जा सकता है, जबकि यहां उसकी पहचान स्पष्ट नहीं है। अतः वह प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसकी नकल में ख्रिस्त विरोधी है जो महाक्लेश को इस संसार में लाएगा। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं, महाक्लेश का अर्थ है महासताव, और उस समय शैतान अपने पूर्ण सामर्थ के साथ संसार में सताव को लाएगा। क्या आज आप अपने जीवन में सतर्क हैं कि आप महासताव से बच जाएं, महाक्लेश से बच जाएं? इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि यीशु ही है जिसने आपके और मेरे और पूरे जगत के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उसके क्रूस पर से बहाए गए लहू के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। वही है एक जो हमें शांति दे सकता है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद में वह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जी हाँ, उसकी शांति संसार से हटकर है और वह अपनी शांति आपको देगा। क्या आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आप उसकी ओर लौट आएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको स्थिर करे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। यीशु रहता है। न कोई भूख होगी, न कोई प्यास होगी।
ना कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी, ना कोई भूख होगी ना कोई प्यास होगी ना कोई उलझन होगी, ना कोई दुख होगा ना कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी।